Chérie? अब आप देखिए कि ये जो वाकया था पानी मांगने का, ये भी उस वक्त पेश आया जब मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम जो थे वो वादिये सीना में थे। तो पहले उन्होंने कहा कि धूप लग रही है और हम बाहर शहरा में हैं, मैदान में हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि उनको बादलों का उनके ऊपर छाया किया। फिर क्या था कि उनके पास उनके लिए खाने पीने का अल्लाह ताला ने इंतजाम किया, अंजलना अलैकुमुल मन्ना व सलवा। फिर क्या था कि अब वो उनको प्यास थी बड़ी, उनको पानी की जरूरत थी, 12 कबीले थे और पीने के लिए पानी का कोई इंतजाम नहीं था। अब फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि हमारे लिए इसका भी कुछ इंतजाम कीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बड़े ही जलील कदर पैगम्बर थे और अपनी कौम के लिए बड़े शफीक थे, बड़े ही मेहरबान थे, उन्होंने फिर कहा वह इज इस तस्का, जब मांगा। मैंने आपको पहले ही बताया था अलिफ सीन ता जब आएगी तो मांगने के मानी पैदा हो जाते हैं। वह इज इस तस्का मूसा ले कौम ही, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा। फकुल नदरिब बी असाकल हजर, फिर हमने कहा कि अपनी लाठी को पत्थर पर मार। ये वही लाठी है जो कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को मोजे के तौर पर दी थी। एक तो ये वाली लाठी असा और दूसरा यदे बेजा, है ना। बहुत से मोजात मिले मूसा अलैहिस्सलाम को, इनमें से ये दो खास, और ये वही लाठी है, उसको कहा कि पत्थर पर मार। और ये एक मोजा था कि पत्थर जो है उसने क्या किया, फन फजरत मिन हुस्नत अशरत आईना, कि इसमें से 10 दो 12 चश्मे जो थे वो फूट बहे। और ये कोई अजीब बात नहीं है कि पत्थर में से पानी का निकल आना, है ना। आप देख लें कि आपके पास मकना 30 है अगर, तो आप उसको जब रखते हैं तो बहुत सी चीजों के लिए वो एक कशिश रखता है, ग्रेविटी रखता है ना, कि उसकी तरफ मतवजो होता है। तो अब अल्लाह ताला ने पत्थर को हुक्म दिया कि वो पानी को जज्ब कर ले, उसने पानी अपने अंदर ले लिया। जब लाठी को उसके ऊपर मारा गया तो उसने क्या किया कि उसमें से फन फजारत मिन हुस्नता अशरत आईना, 12 चश्मे उसमें से निकल आए। और ये आयत का अगला हिस्सा बड़ा अहम है, पद अलीमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम, हर कबीले ने हर गुरो ने अपने पानी पीने की जगह को देख लिया। अलीमा, पद अलीमा उनको पता चल गया, जान लिया। यानी मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर की जिंदगी और पैगंबर के साथी जो थे, आप उनको जो लेके जा रहे थे सहरा के अंदर थे, लेकिन ऑर्गेनाइज थे, ऑर्गेनाइजेशन थी, एक नज्मो जब्त था कि 12 कबीले थे तो 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे आ गए। और अगर कबीला बड़ा था तो पानी का जो सुराख हुआ ना, चश्मा निकला, वो बड़ा था। कबीला छोटा था तो उसके लिए छोटा था। ये अल्लाह का मुआवजा था जो उनको मिल गया ना। और कद अलिमा बहुत अहम है, थे तो वो इंसान ही सहरा में थे, लेकिन उनको पता चल गया कि कहां से जाके पानी लेना है, कौन सी उनकी जगह है। आमतौर पे आप देखें हमारे देहातों में, हमारे कंट्रीज में क्या है कि पानी के लगाने पे, खेतों में पानी के लगाने पे झगड़ा होता है, कत्ल हो जाता है, कत्ल गारत हो जाता है ना। और अरबों का क्या हाल था, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की इतनी अच्छी तरबियत की कि वो एक डिसिप्लिन के साथ उन्होंने अपने पानी पीने की जगह को सीख लिया, देख लिया। यही मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं और आप इस दुनिया में जो भी जिंदगी गुजारें, कोशिश करें कि उसको नज्म व जब्त के तहत ऑर्गेनाइज करके, क्योंकि कायनात का पूरा निजाम बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है। तो बात अपने घर की हो या बात मदरसे और मस्जिद की हो या तफहीमुल कुरान कोर्स की हो, तो जब बैठे तो अपने आप को समेट के, अपने बैग और अपनी चीजों को समेट के, है ना, तरतीब से। जैसे शुरू में बताया था कि अपनी एक फाइल बना लें, आपको कोई फोटोकॉपी मिले, तजवीद के नोट्स हैं या हदीस मिल रही है या कोई और जो भी चीजें मिल रही हैं, उसको अपनी फाइल के अंदर आप रखते चले जाए, डेट लिखें, है ना। आप जैसे मसलन सिपारे आपको मिला, तोहफा मिला, के खाली जगह है मतलब एक तरफ, और आप लिख सकते हैं, लेकिन जब आप नाम नहीं लिखते तो आप छोड़ के चले जाते हैं बाद में जो है उसको, यानी ये सिपारा पता नहीं किसका है, किसके लिए रखे, इसी को नाम ही नहीं कोई लिखा हुआ। है ना। तो सिपारे पे नाम लिखना, किताब पे नाम लिखना, डायरी पे नाम लिखना, सबसे पहले जब भी कोई चीज ले उस पे नाम लिखना, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। अपनी चीजों को खुद से संभाल कर जाना। इसी तरह यहाँ पे अगर हम ब्रेक लेते हैं तो उसमें पानी का गिलास पीते हैं, उसके गिलास को उठा के रखना, कोई चीज खाते हैं खिलाते हैं उसके रैप जो भी हैं, या कचरा है या टिश्यू है उन चीजों को उठाना, या कुर्सियां हैं डेस्क है इनको समेटना। तो क्या है कि मुसलमान की जिंदगी नज्म व जब्त की जिंदगी है। हम में से जैसे हर एक को पता होना चाहिए कि बैठना है तो कैसे बैठना है, कौन सी जगह है ना। तो यही बात है कि कद आलिमा कुल्लु अनासिन मशरबहुम, कि उनमें से हर एक ने अपने पानी पीने की जगह को देख लिया। अल्लाह ताला ने कहा कुलू वश्रबू मिन रिज़्किल्लाही वला तअसौ फिल अर्दि मुफ्सिदीन, खाओ और पियो। मनोसलवा तो पहले ही नाजिल हो रहा था, ठीक है ना। अब कहा पे कि पियो भी, कहां से? अल्लाह के रिज़्क से, अल्लाह की दीवी नेमतों से, खाओ पियो मजे करो, है ना। हम केला खाते हैं, छिलका फेंक देते हैं, पर अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते। हम ठंडा पानी पीते हैं और जो है उस ठंडे पानी पीने पर अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते, है ना। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के साथ इब्न अल हैसम एक सहाबी के बाग में गए, और वो ना खजूरों का पूरा शाख ही ब्रांच ही तोड़ कर ले आए खोशा। आपने कहा कि तुम चंद खजूरें क्यों नहीं ले आए? उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता था कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा अपनी मर्जी से चुन चुन के खाए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खजूरें, ये ठंडा पानी और ये साया, कयामत के दिन इसके बारे में तुमसे जवाबदेही की जाएगी। तो जो भी अल्लाह नेमतों से नवाजता है, फिर क्या है कि उन नेमतों का हिसाब किताब भी है। तो बनी इसराइल पर बहसियत कौम जो नेमतें की गई, एक-एक का जिक्र है, बड़ी मोहब्बत के साथ है कि तुम्हें जरूरत थी, तुम मुश्किल में थे, तुमने मांगा, नबी ने कहा और मैंने वो दे दी, फिर तुमने क्या किया? कहा मैंने कि खाओ और पियो अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से, और फसाद ना करो जमीन में फासिद बनकर, और जमीन में फसाद ना फैलाते फिरो। हमने ये पढ़ा था ना कि मुफसिद वो होता है जो एक दफा कोई फसाद हो जाए, एक दफा कोई झगड़ा कर दे। तासो ये होती है कि बार बार फसाद करना के आदत बन जाए। बाज घरों में झगड़े की आदत होती है। मुझे किसी की, बुजुर्ग की ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि बच्चा रो रहा था तो कहने लगे कि इसको ना दूध पिलाओ। कहने लगे कि बच्चा जब दूध चाहता है ना तो वो दूध उसको देना चाहिए, और जब माँ उसको दूध नहीं देती ना उसको, फिर वो रोता है। उसका एक टाइम होता है वो बेचैन होता है, दूध देना चाहिए। जब माँ दूध नहीं देती तो फिर वो रोता है, और फिर वो रोने लगता है तो माँ कहती है कि अब इसको दूध, वो और रोता है, वो और रोता है, फिर माँ उसको दूध देती है। तो बच्चे को पता चलता है कि रोऊंगा तो दूध मिलेगा, अगर उसको रोए बगैर दूध मिल जाए वो रोएगा नहीं, और जब हम उसको रोए बगैर नहीं देते तो फिर वो रो रो के मांगता है बच्चा। तो बच्चे की आदतें सानिया बन जाती है, एक हैबिट बन जाती है। तो जो भी काम करने ही है, खाना पकाना है, खाना देना है, दूध देना है, ये जो बच्चे की जरूरियात हैं, तो अगर हम वैसे ही पूरी कर दें तो बच्चे फिर रोएंगे नहीं। और बाज औकात हमारी आदत होती है कि जब तक बच्चा रोए नहीं हम उसको उसकी जरूरत को पूरा नहीं करते, है ना। तो क्या है कि फिर झगड़ा होता है, फसाद होता है, लड़ाइयां होती हैं, है ना। इसी तरह मियां बीवी के हुकूक हैं कि वो आपस में मोहब्बत प्यार से अदा करने चाहिए, ना ये कि एक झगड़े का माहौल बन जाए। या जैसे कराची देख लें, कराची जो कितना खूबसूरत था, जो रोशनियों का शहर था, जहां तिजारत उरूज पर थी, जहां पे पूरे पाकिस्तान से, यानी वो एक मिनी कंट्री था एक तरह से, पूरे पाकिस्तान से लोग आते थे, वहां जाते थे और तिजारत और कारोबार ढूंढते थे। लेकिन वही तिजारत, फिर वही कराची, उसको फिर किसी की नजर लग गई, फिर वहां खून बहने लगा, फिर वहां धुआं उठने लगा, फिर वहां गाड़ियां जलने लगी, फिर वहां कारखाने जलने लगे, फिर वहां लोग जलने लगे, फिर वहां वे मस्जिद पर हमले होने लगे, है ना। तो ये क्या है? ये है तासव के, फसाद की आदत बन गई। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जमीन में फसाद ना फैलाओ। तो असल फसाद क्या होता है कि अल्लाह को, अल्लाह के हकूक अदा ना करना और बंदों के हकूक अदा ना करना, जिसके नतीजे में फसाद फिल अर्ज होता है। सबसे बड़ा फसाद क्या है कि शिर्क करना। और क्या फसाद है कि डाके डालना, चोरी करना, जिना करना, ये सब चीजें फसाद है। इसी तरह जिना करना, है ना। तो अब आप देख लें कि कराची में आम डाके हैं, आम मतलब वो चूड़ियां उतरवा ली और कड़े उतरवा लिए और पर्स छीन लिया, और सिर्फ कराची नहीं पूरे पाकिस्तान के हम हालात देख रहे हैं या इंडिया के या दुनिया के। तो वो एक बुजुर्ग सी औरत थी, कहा करती थी अंग्रेज का दौर ज्यादा चंगा सी, सुकून ना रहते सी, ऐसे डाके और चोरियां नहीं होती थी जब अंग्रेज हुकूमत करता था। तो हालांकि कौन बताए कि इस्लाम जब आया तो फिर जो थे जो राहजन थे वो राहबर बन गए, है ना, जो इज्जतें लूटने वाले थे वो इज्जतों के पासबां बन गए। तो ये है बात कि जब अल्लाह का कानून नाफिज नहीं किया जाता तो जमीन में फसाद पैदा होता है। इसी तरह घरों में अल्लाह का कानून ना नाफिज किया जाए, घर भी झगड़े झगड़ा रहता है, घरों के अंदर भी बरकत नहीं रहती। जिन घरों में झगड़े होते हैं और लड़ाइयां होती है ना, वहां बरकत नहीं होती, अल्लाह की रहमत नहीं होती। वाइज कुल तुम या मूसा, और जब तुमने कहा ए मूसा, किसने कहा ये, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा लन नसबिरा अला तआमिन वाहिद, हम हरगिज सबर नहीं कर सकते एक खाने पर। पहले कहा ना अल्लाह ताला ने कद मन अल्लाहू, कि उन पर मन नाजिल किया और सलवा नाजिल किया, एहसान किया, है ना। अब ये के मनो सलवा खाते खाते वो तंग आ गए, पका पकाया था, यानी आप सोचें हलवा भी मिल रहा था और रोस्ट भी मिल रहा था, मीठी चीज थी ना धनिया की तरह की मन, और सलवा क्या था बटेर बर्ड्स, तो हलवा भी था और रोस्ट भी था और बगैर कुछ किए कराए मिल रहा था। कुछ लोग पाकिस्तान जाते हैं, वहां खूब दावते खाते हैं, खूब मजे करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं घर का मजा नहीं आया, है ना, घर बड़ा फिर भी याद रहा उदास, हालांकि वहां खूब खिदमत भी होती है, तोहफे तहाइफ मिलना जुलना, बाकी बातें मैं नहीं कर रही। तो अब क्या है कि फिर भी घर की याद आती है, अब कहीं भी मेहमान बनकर जाते हैं, इंडिया जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं तो घर फिर भी याद आता है। अब बनी इसराइल को बैठे बिठाए सुबह शाम खाना मिलता था, है ना। हम में से अक्सर औरतें कहती है करना क्या है जी, सारा दिन तो चूल्हे के आगे गुजर जाता है, हम तो किचन के हैं और हम तो और करना क्या है जी, है ना। तो हम भी करते इबादत, अगर ये काम ना करने होते तो जो हमसे पहले कौम गुजरी थी उसका काम था इबादत करना, है ना, उनको मनोसलवा पका पकाया मिल रहा था, लेकिन उन्होंने क्या कहा या मूसा लन नसबिर अला तआमिन वाहिद, हम एक खाने पे हरगिज सबर नहीं कर सकते। ये नहीं कहा कि नहीं सबर कर सकते, हरगिज नहीं सबर कर सकते, लन आ गया है। अब क्या करें, फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्द मिन बकलिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। आप दुआ कीजिए हमारे लिए अपने रब से कि वो निकाले जमीन में से, जमीन की पैदावार, तरकारी, साग, खीरा, ककड़ी, घी, लहसुन, प्याज, दाल वगैरह, है ना। जिस काम को जहां में आया था तू नजीर, जिस काम को जहां में आया था तू नजीर, खाना खराब तुझसे वही काम रह गया, खाना खराब तुझसे वही काम रह गया, यानी ककड़ी, खीरा, लहसुन, प्याज, दाल पर आगे। और अल्लाह ने भेजा कि क्यों था दुनिया में, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैंने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हारा इम्तिहान लूं कि तुम में से अच्छे अमल करने वाला कौन है। तो उनको तो सिर्फ इबादत करनी थी, रसूल की अताअत करनी थी, कुरान को याद करना था, अल्लाह का कहना मानना था, लेकिन उन्होंने लहसुन प्याज को मांगना शुरू कर दिया, है ना। तो अब आप देखें कि असल बात क्या है कि इतने आया सी लाल खरीदण नू तेर हंग अजवैन दे ला बैठो, यानी खरीदने तो डायमंड थे तो अजवैन लेनी शुरू कर दी, हंग लेनी शुरू कर दी। बेशक वो डिफरेंट है लेकिन मामूली चीज है ना। तो असल बात क्या है कि यानी हम भी क्या करते हैं कि जैसे हमारी जिंदगी का मकसद क्या है कि अल्लाह की बंदगी करना, अल्लाह की अताअत करना, लेकिन कपड़ों के सूट बनाने, उनके डिजाइनिंग करने, बहुत से खाने पकाने। अब आप यहाँ पे खानों का जिक्र है, आप खानों पर ही आ जाइए, है ना। हम में से बहुत से लोग कहते हैं जब तक 2 सालन ना हो ना हमारा खाना नहीं लगता, दाल भी जरूर है और उसके साथ कोई भी सब्जी गोश्त वगैरह जरूर है ना, और फिर साथ में हम वो बनाते हैं सलाद बनाते हैं, फिर चटनियां रखते हैं। मैं ये नहीं कहती हम ना बनाएं, लेकिन हम इन्हीं कामों के ना हो जाएं कि फिर अल्लाह की बंदगी या 5 वक्त की नमाज के लिए वक्त नहीं मिलता हमें, 5 वक्त की, हम कहते हैं वक्त नहीं मिलता, वक्त मिला नहीं करता, वक्त लिया जाता है ना। तो असल बात क्या है कि जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई, मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया। तो हमारी असल जिंदगी का मकसद अल्लाह की बंदगी है। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, है ना। तो ये है कि उन्होंने भी ये मुख्तलिफ मुतालबात किए और असल में उनको जो है वो पका पकाया खाना मिल रहा था, लेकिन वो उस पर सब्र ना कर सके, है ना। तो हमें भी अपनी जिंदगी पर इस पर गौर करना चाहिए कि हम भी जो कुछ मौजूद होता है उस पर सब्र नहीं करते और बहुत से मुतालबात करते हैं कि ये नहीं ये, ये नहीं ये। फिर अल्लाह ताला कहते हैं, उनसे पूछा गया यानी मूसा अलैहि सलाम ने कहा, पाला अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, क्या एक बेहतर चीज के बजाय तुम अदना दर्जे की चीजें लेना चाहते हो। यानी वो बेहतर चीज है जो अल्लाह आसमान से नाजिल हो रही है, अल्लाह की तरफ से आ रही है, और तुम जमीनी चीज चाहते हो, अर्थ अर्थ की चीजें चाहते हो, अदना चीजें चाहते हो। अगर तुम ये चाहते हो तो क्या करो, ए बितु मिसरन फैलम व इन लकुम मा सअल तुम, कि तुम शहर में उतर जाओ यानी किसी भी बस्ती में किसी भी शहर में चले जाओ, व इन लकुम मा सअल तुम, तुम्हें मिल जाएगा जो तुमने सवाल किया। बाज़ का घरों में भी होता है कि बच्चे कैंडियां मांगते हैं, कुछ ऐसी चीजें मांगते हैं, आप उनको नहीं देते, आप कहते हैं आप फूड लें, प्रॉपर खाना लें, ये जो जंक फूड जो है वो उसका इस्तेमाल आप करने से मना करते हैं ना। लेकिन बच्चों को लगता है कि नहीं, शायद हमारे वालदैन हमारे साथ ना अच्छा सलूक नहीं कर रहे, हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, है ना। तो लेकिन क्या है कि वो अंदाजा ही नहीं होता कि वो जो मुतालबा कर रहे हैं वो अदना है और वालदैन जो दे रहे हैं वो खैर है। तो हम क्या कहते हैं, काश के हमारे बच्चों को हमारी बात समझ में आ जाए, ये समझते क्यों नहीं है। फिर हम कभी तंग आकर कहते हैं कि ले लो फिर खा लो कैंडियां, है ना, तो जंक फूड उनको दे देते हैं। तो इसी तरह से यानी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उनको समझाया, उनको बताया, जब वो ना माने तो उनको कहा गया कि जाओ किसी शहरी आबादी में जाकर रहो, फइन्नलकुम मा सअलतुम, अब तुम्हारे लिए वही कुछ है जो तुमने मांगा। अब जो है ये बताया जा रहा है कि बनी इसराइल ने क्योंकि नाफरमानियां की और नाफरमानियों में वो हद से गुजर गए, एक के बाद एक इनकार था, एक के बाद एक मुतालबा था, अब क्या हुआ कि अल्लाह ताला भी उनसे नाराज हो गया और अल्लाह ताला ने भी उन पर जो है वो अजाब का एक सिलसिला शुरू किया। तो अब क्या था वो अजाब का सिलसिला, वदुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल्मस्कना, उन पर डाल दी गई, जैसे मार दी गई, जैसे होता है ना कोई चीज किसी को मार के दे देना, किसी के ऊपर मुसल्लत कर देना, दरबा का मतलब होता है मारना, और दुरीबत मार दी गई, मजहूल है असल में ये, कि उन पर मुसल्लत कर दी गई, लागू कर दी गई, दुरीबत अलैहिमु जिल्लतु, जिल्लत और खारी, वल मस्कनतु पस्ती बदहाली, वबाऊ बिगज़बिन मिन अल्लाह, और वो अल्लाह के गजब में अल्लाह के गुस्से में घिर गए। अब क्या था कि उनकी ये आदत बन गई थी कि वो अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ देखते थे तो फौरन नाफरमानी करते थे, अब उनकी ये आदत हो गई थी कि वो मुसलसल मुतालबात करते थे और वो ये चाहते थे कि उनके मुतालबात जो हैं वो पूरे किए जाएं। तो अब ये है कि जबकि वो फारिग रहते तो अल्लाह की इबादत करते, लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं हमें ये चीजें चाहिए, तब उनको कहा कि जाओ तुम किसी भी बस्ती में ठहरो, और ये तीन तरह के अजाब उनके ऊपर डाल दिए गए, पहला जिल्लत का कि जलील और ख्वार, दूसरा मोहताजी, एक ही जगह का हो गए रह गए मस्कनत, तीसरा क्या था कि अल्लाह के गजब में घिर गए। अल्लाह ताला ने ये खास तौर पे ये तीन अजाब जो दिए तो वो क्यों दिए, इसकी क्या वजह थी, पहली वजह क्या थी, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ, ये इस वजह से था कि वो अल्लाह की आयात से कुफ्र करते थे, उनकी ये आदत थी कि अल्लाह की आयात का इनकार करते थे। और आपने कुफ्र के अंदर ये मानी पढ़े हैं ना कि कुफ्र रसूल का भी आता है, कुफ्र जो है वो मुनाफकत का भी होता है, और कुफ्र जो है वो फिस्क का भी है, यानी मुख्तलिफ किस्म के हैं कि मुंह से इनकार, दिल से इकरार, दिल से इनकार, मुंह से इकरार, मुख्तलिफ। तो अब वो सबसे पहली बात क्या थी कि अल्लाह की आयात के साथ, तौरात के साथ उन्होंने इनकार करना शुरू कर दिया। पीछे हम पढ़ भी चुके हैं ना कि उन्होंने जो क्या किया था कि बदल दिया था, कहा उनको कुछ गया था और उन्होंने उसको बदलकर कुछ से कुछ कर दिया, उन्होंने हितातुन को हिंतातुन कहना शुरू कर दिया। तो अब यहां पे भी क्या है कि नंबर वन अल्लाह की आयात का इनकार है। और जब अल्लाह की आयात का इनकार किया जाए तो अल्लाह का अजाब जो है वो मंडलाने लगता है। दूसरी चीज क्या है, वयक्तुलूना नबीयीना बिगैरिल हक, और वो नबियों को बगैर हक के कत्ल करते थे, वो नबियों को बगैर हक के कत्ल करते थे। तो अब आप देखें कि एक तो होता है ना अन नफ्सु बिन नफ्सी अल कत्लु बिल कत्ली अल हुर्रु बिल हुर्री वल अब्दु बिल अब्दी वल उनसा बिल उनसा, ना कि जान का बदला जान है कत्ल में। तो नबियों को ऐसे नहीं कि नबियों ने कोई गलती की थी तो उन्होंने नबियों को कत्ल किया, उन्होंने बगैर किसी वजह के जो है वो नबियों को कत्ल किया। और इसकी हमें मिसालें भी मिलती हैं कि आप देखें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो आसमान पर क्यों उठाए गए थे, क्योंकि वो सूली पर चढ़ाना चाहते थे और वो तो कहते हैं कि सूली पर चढ़ा दिया गया। फिर आप देखें कि हजरत यहया अलैहिस्सलाम जो थे इनको भी एक रक्स करने वाली एक डांस करने वाली औरत के मुतालबे पर हजरत यहया अलैहिस्सलाम का सर काट कर एक थाल में पेश करके दिया गया, और वो वक्त के नबी थे ना। फिर आप देखें कि इसके अलावा हजरत यहया अलैहिस्सलाम हैं और हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हैं, तो हमें बहुत से ऐसे नबी मिलते हैं कि जिसके साथ इन्होंने जो है वो जिनके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। फिर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हैं, कहते हैं उन्होंने भी उनकी जान के भी पीछे पड़ गए थे कि उनको जजीरा नुमा सीना के पहाड़ों में जाकर पनाह लेनी पड़ी। फिर इसी तरह से हजरत मीकाया एक नबी थे, उनको भी इनसे जो है वो दूर जाना पड़ा। इसी तरह हजरत आमूस के मुतालिक कहते हैं कि इसराइली रियासत को जब उन्होंने रोका कि बदकारी ना की जाए और उनके बुरी जो हरकतें थी, तो इनको नोटिस दे दिया गया कि मुल्क से निकल जाओ और बाहर कहीं जाकर जो है वो नबूवत करो। तो बहुत से अंबिया हैं जिनके बारे में हमें ये मिलता है कि इन्होंने जो है वो बनी इसराइल ने जो है उनको कत्ल किया। और सिर्फ बनी इसराइल ही नहीं, आप अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें कि मक्का वालों ने उनको मक्का से महरूम कर दिया। आपने ताइफ का सफर किया, आप गए थे उन पर खुशबू बखेरने, आप गए थे उनको तौहीद की दावत देने, उन्होंने आप पर पत्थर मारे, उन्होंने आपको बुरा भला कहा, आपने उनके लिए दुआएं की ना। तो आपने गजवात की कि मक्का के लोग उठकर बार बार आते थे मुसलमानों को खत्म करने के लिए, है ना। तो इस्लाम की पूरी तारीख में भी ये है कि जो नेक लोग थे उनको तकलीफें दी गई, अजियतें दी गई, बहुत से मुसलमान शहीद भी हुए। फिर आप वही यानी, और ये सिलसिला अभी तक चल रहा है, पाकिस्तान में आप देख लें, दुनिया में देख लें, है ना। डॉक्टर गुलाम मुर्तजा, आपने मतलब उनका भी सुना होगा कि उनको भी शहीद कर दिया गया ना, और ऐसे ही कोई उनके पीछे पड़ा था कातिल को। उनकी बेटी से अभी ईद पर खाने पर हमारी मुलाकात हुई, डॉक्टर गुलाम मुर्तजा की बेटी से, तो बता रही थी कि कातिल ने खुद माना कि कुछ हजार 5,000 या 10,000 कुछ रुपए बस किसी ने दिए और उनको जो है वो मार दिया गया। और वो उस वक्त अपना एक कुरान के लिए कोई इंस्टीट्यूट की जमीन खरीदने के लिए गए हुए थे ना। फिर आप इसको देख लें कि जसारत के जो तकबीर के एडिटर थे सलाहुद्दीन, उन कितना अच्छा लिखते थे, उनको शहीद कर दिया गया। फिर डॉक्टर नजीर शहीद को आप देख ले, है ना। फिर हसनुल बन्ना शहीद, है ना, फिर वो सईद हकीम सईद। तो इस्लाम की तारीख शहदा की तारीख है ना। और कुतुब शहीद, तो बेशुमार हमें नाम जो है वो मिलते हैं। तो उस जमाने में भी था, आज भी है, और वो भी करते थे, मुसलमान भी कर रहे हैं। वयक्तुलूना नबीयीना बिगैरिल हक, और कितनी कितनी बड़ी बात है कि बगैर हक के जो है वो किसी को कत्ल कर दिया जाए, वो भी नबी को जो इस्लाह करने के लिए उठे, जो कुछ चाहे ही ना। फिर फरमाया ज़ालिका बिमा असव्वा कानू यअतदून, ये था नतीजा इनकी नाफरमानियों का और इस बात का कि वह हुदूदे शरा से निकल निकल जाते थे, है ना। तो तीन तरह का, तीन उनके गुनाह थे, आयतों का इनकार, अल्लाह की आयतों का, नबियों को कत्ल करना, और तीसरा क्या है कि अल्लाह की हुदूद से निकल निकल जाना। एक तो है ना नाफरमानी करना, और एक है कि नाफरमानी में भी बाउंड्रीज को क्रॉस करके दूर तक चले जाना, बहुत दूर तक जाना। तो ये वो करते थे। तो अल्लाह ने भी तीन अजाब दिए, जिल्लतु वल मस्कनतु व बाउ बिगदब मिनल्लाह। तो आप देख लें कि यानी इस वक्त भी, यानी अगर हम बनी इसराइल की तारीख को देखें, तो इस कौम का पूरी दुनिया में कोई छोटा सा भी जमीन का टुकड़ा नहीं है जहां इनकी हुकूमत कायम हो, है ना। तो कभी कायम नहीं हो सकी। फिलिस्तीन में अगर इनकी हुकूमत अभी कायम है तो ये मौजूदा हुकूमत कैसी हुकूमत है? ये इसराइल की थोड़ी है, ये अमेरिका और बर्तानिया की एक छावनी है, इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं है ना। तो जब कुरान ये कहता है कि वो उन पर जिल्लत और मस्कनत नाजिल कर दी गई, दुरिबत लिख दी गई, तो अब दुनिया में हालांकि दौलत बहुत है लेकिन कभी ईसाइयों के हाथों कभी किसी के हाथों, और आपको वो भी अच्छी तरह पता है कि हॉलोकॉस्ट का वाकया आपको पता है ना कि जर्मन में जब हुआ था, हिटलर ने जब मरवाया था 1939 में, और उस वक्त क्या था कि हजारों की तादाद में जो थे इनको जो है वो जला दिया गया था, किताबें भी और इनको भी। तो ये क्या है कि ये है अल्लाह के ताला की नाफरमानियों की सजा। फिर चूंकि यहूदी अपने आप को ये समझते थे कि हम अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह के पसंदीदा हैं, ला तमस लन तमसन नारू इल्ला अय्यामम मादूदा, कि आग हरगिज नहीं छुएगी मगर गिनती के चंद दिन, है ना। तो अब अल्लाह ताला ने आगे इसका भी जवाब दिया है। अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू, खा वो यहूदी हों, यानी यकीन जानो कि नबी अरबी को मानने वाले हों या यहूदी, व नसारा या ईसाई, व साबीना या साबी, यानी कोई भी किसी भी ग्रोह से कोई हो, मुसलमान हो यहूदी हो ईसाई हो या साबी, मन आमना बिल्लाही वल यौमिल आखिरी, जो कोई ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, वो अमला सालेहन और वो अमल करे सालेह, फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, तो उनका अजर जो है उनके रब के पास है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। तो यहां पर अल्लाह ताला ने जो खास बात है जो बताना चाह रहे हैं वो ये है कि असल बात अल्लाह के यहाँ ये नहीं है कि कौन किस ग्रोह से ताल्लुक रखता है, बल्कि अल्लाह के यहाँ असल मामला अमाल और अकायद के लिहाज से होगा। और यानी जो भी अमल नहीं कर रहा, अमले सवाले नहीं है उसके, उसका अकीदा ठीक नहीं है, तो फिर क्या है कि अल्लाह के यहाँ उसका कोई अजर नहीं होगा। जैसे यहूदी कहते हैं ना कि हम तो यहूदी हैं, हम जन्नत पे जाएंगे, हमें आग नहीं छुएगी। जैसे मुसलमान कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह के उम्मती हैं और हमारी सिफारिश हो जाएगी, है ना, हमने ला इला इल्ला कहा, हमें जन्नत मिल जाएगी। तो इसी तरह अगर ईसाई जो हैं उनका कोई अकीदा है, या साबी हैं वो अपने आप को कुछ समझते हैं, और इसी तरह यानी आप आम भी इसको ले लें कि बहुत सी जमातें हैं, हर जमात कहती है कि हम बहुत अच्छे हैं, यानी हर जमात कहती है कि इससे बाहर जो लोग हैं ना वो खराब है, वो गलत है ना। हालांकि असल बात क्या है, जमातों का जो फर्क है आप यूं समझ लें कि एक मंजिल है, एक समंदर है, और बहुत से नाले हैं जो समंदर की तरफ बह रहे हैं, है ना, बहुत से नाले हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई लंबे रास्ते से आ रहा है कोई छोटे रास्ते से आ रहा है, मंजिल क्या है कि सब आके समंदर में गिर रहे हैं, है ना। तो यानी मुख्तलिफ जमातें वो सब चाहती, जो मुसलमानों की है वो चाहती तो रब की रजा ही है, और वो फरीजा काम अल्लाह के दीन को कायम ही करना चाहती हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अभी सिर्फ प्रीच करना चाहिए, सियासत में नहीं आना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं सियासत को भी साथ लेके चलना चाहिए, कुछ कहते हैं नमाज रोजा ठीक कर ले बाकी चीजें भी ऐसा ऐसा ठीक हो जाएंगी, है ना। तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी मस्जिद को किसी जमात को कभी बुरा ना कहा करें, किसी इंसान को कभी बुरा ना कहा करें, वो कैसा भी क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह जानता है कि उसके अमल कैसे हैं और उसका मकाम क्या है। मेरा और आपका ये मकाम नहीं है कि हम किसी से नफरत करें, किसी को बुरा कहें और किसी के बारे में कोई भी गलत बात सोचें, ठीक है। ये फैसला करना अल्लाह का काम है। यहां पे हमें यही बात कही जा रही है, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, यूं तो सब कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, यूं तो सब कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो, है ना। तो हम तो यही कहते हैं कि हम सैयदजादी हैं, लेकिन क्या मैं नमाज पढ़ती हूं? अगर कोई सैयदजादा भी हो और नमाज ना पढ़ता हो तो क्या उसका ना, फिर क्या उसको कोई अल्लाह की पकड़ से बचा सकता है? क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ मेरी फुफो सफिया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, अगर कुछ लेना है ना तो आज मुझसे ले लो, खुदा की कसम कयामत के दिन मैं तुम्हें अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकता। ए आले मतलब वालो, ए अब्दे मनाफ वालो, ए बनू हाशिम, सारों को कर करके बार बार पुकारा था ना। तो असल बात क्या है कि अल्लाह के यहाँ जो चीज काम आएगी वो क्या है, मन आमना बिल्लाही, अल्लाह पर ईमान लाना, वल यौमिल आखरी और आखरत के दिन पर, वामिला सालेहन और अमल हो सवाले अच्छे हो। यानी खाली ईमान भी काबिल कबूल नहीं है अगर अमल ना हो, और खाली अमल भी काबिल कबूल नहीं है अगर बुनियादों में ईमान ना हो। दोनों चीजें लाजम मलजूम है, तो बेशक वो अहले किताब हों या कोई भी हो, फिर क्या है कि उनके लिए ना कोई खौफ है और ना ही उनके लिए कोई गम है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि वाइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुम तूर, याद करो वक्त जबकि हमने तूर को तुम पर उठाकर तुमसे पुख्ता वादा लिया था। क्या कहा था, खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़कुरू मा फ़ीही लअल्लकुम तत्तकून, कि जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं उसे मजबूती के साथ थामना, और जो अहकाम और हदायात इसके अंदर दर्ज हैं उन्हें याद रखना। तो इसका क्या फायदा होगा, लअल्लकुम तत्तकून, इससे उम्मीद है कि तुम जो है वो तकवा की रविश पर चल सकोगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिली और आपने वापिस आकर कौम को दिखाई कि ये मुझे अल्लाह ने तौरात दी है और उनको सुनाई, तो वो अहकाम जो उसके अंदर थे उनके मिजाज के खिलाफ भी थे, उनको बड़ी सख्त लगी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो जब तक अल्लाह को ना देख लें हम मानते ही नहीं कि अल्लाह ने किताब दी है ना। तो फिर उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में से 70 आदमियों को मुंतखब किया और कोहे तूर पर लेकर गए। फिर अल्लाह ताला के साथ जो मूसा अलैहिस्सलाम हम कलाम हुए, इन्होंने वो बातें सुनी और गवाही दी कि हाँ भी इसमें कोई चीज नई नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से है। तो यहाँ पर उसी का जो है वो जिक्र हो रहा है कि जब उन्होंने इनकार किया था ना कि हम नहीं मानते जब तक देख ना लें, तो तूर पहाड़ उन पर उठा दिया गया था। ऐसे लगता था जैसे छतरी की तरह उनके ऊपर आना चाहता है कि अब गिर जाएगा। तो फिर इन्होंने जो है वो कहा कि हाँ हम मानते हैं, हम इकरार करते हैं, और फिर उन्होंने तौरात को माना। अल्लाह ताला ने कहा इसको कुव्वत से पकड़ो और जो कुछ इसके अंदर है उसको याद करो। तो बाज लोग कहते हैं कि कोहे तूर का एक बड़ा टुकड़ा उठाकर उनके सर पर रख दिया था कि तौरात को मानो, नहीं मानोगे तो अभी ये तूर पहाड़ तुम पर गिर जाएगा। और फिर उन्होंने उसको जो था वो इकरार कर लिया था। तो अच्छा, बाज लोगों के दिल में ये सवाल पैदा हो सकता है कि दीन में तो सख्ती नहीं है, ला इकराह फी दीन कद तबय्यन रुश्द मिन अलगी, कि दीन में सख्ती नहीं है तो फिर ये पहाड़ सर पर रखकर उनको क्यों मनवाया गया। उनकी आदत थी इनकार करना, बगावत उनकी आदत थी। तो जब कोई बागी बन जाए, जब कोई बगावत ही करे, तो फिर क्या होता है कि दो ही रास्ते होते हैं कि या तो उनको मार दिया जाए या फिर वो कबूल कर लें एक चीज को। तो पहाड़ इसलिए था कि वो कबूल कर लें या डराना डराना, अगर ना मानते तो हो सकता है फिर अल्लाह ताला जो भी मामला जो थे वो करते। तो यही सजा है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं सुम्मा तवल्लई तुम मिन बाद ज़ालिक, फिर इसके बाद तुम अपने अहद से फिर गए, यानी वहां से जब वापस आए फिर तौरात पर अमल ना किया, जिंदगियां उसके मुताबिक नहीं थी। फलौला फदलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो क्या होता, लकुंतुम मिनल खासिरीन, तो तुम कब के जो थे वो तबाह हो चुके होते। अब आप देख लें कि हमारे पास भी कुरान मजीद है, लेकिन हमने कब उसको कुव्वत से पकड़ा है ना, हम कब उस पर अमल करते हैं, हमें कब याद है, वज़कुरू माफी ही, हमें कब पता है कि उसके अंदर क्या है ना। सारी जिंदगी के काम करते हैं, सारी डिग्रियां लेते हैं, सबके लिए मेहनत करते हैं, नहीं करते तो इस कुरान के लिए नहीं करते कि जिंदगी के थोड़े से औकात, थोड़ी घड़ियां, थोड़े साल इसको समझने के लिए लगा दे। तो इसको समझना, इस पर अमल करना, इसके फिर क्या होगा, लअल्लकुम तत्तकून, के हमें फला मिलेगी, हम मुत्तकी बन सकते हैं। और हम भी रमजान आता है वादा करते हैं, हज करते हैं वादा करते हैं, कोई मुसीबत आती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई बीमारी होती है, कोई मर जाता है, फिर कहते हैं कि या अल्लाह बस तू मुझे मोहलत दे के मैं ये काम कर लूँ ना। फिर मोहलत मिलती है, फिर दिन बदलते हैं, फिर हमारे रुत बदलती है, फिर हमारे दिलों की ईमान की जो दौलत है वो भी बदल जाती है, फिर हम फिर जाते हैं, है ना। सोचते हैं नमाज पढ़ेंगे लेकिन फिर नमाजें कजा करते हैं, है ना। तो नमाज फर्ज का पढ़ना, इखलाक का अच्छा करना, अल्लाह और अल्लाह के हकूक पूरे करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। फिर अल्लाह ताला पूछते हैं वलकद अलिम तो मुल्लाजीना अतदउ मिनकुम फिस सब्त, फिर तुम्हें अपनी कौम के उन लोगों का किस्सा भी तो पता है ना जिन्होंने सब के कानून को तोड़ा था। فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ. کیسے بندر؟ خاسئین, جو کہ دھتکارے ہوئے ہیں, جن پر لعنت ہے. تو بنی اسرائیل کے لیے کیا تھا کہ ہفتے کا دن عبادت کا دن ہے, کام کو کاٹیں گے اور کیا کریں گے, اللہ کی عبادت کریں گے. اور کیا تھا کہ بنی اسرائیل کی ایک بستی سمندر کے کنارے آباد تھی, اور اس دن کیا تھا کہ مچھلیاں جو تھیں وہ زیادہ آتی تھی. تو یہ لوگ کیا کرنے لگے کہ انہوں نے سمندر, وہ جو سمندر کے ارد گرد جو تھی کھائیاں بنا لی کہ مچھلیاں اس میں آ جائیں گی, جب ہفتے کی شام ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ پکڑ لیں گے. صحیح ہے؟ تو یہاں آگے ہم سورت آراف میں یہ بستی والوں کا پورا واقعہ تفصیل سے پڑھیں گے. تو اب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم نے ہفتے کے دن عبادت کی بجائے مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی, اور ان کے تین گروہ ہو گئے تھے ان کی قوم کے, ایک مچھلیاں پکڑتے تھے, ایک پکڑتے نہیں تھے, روکتے بھی نہیں تھے, اور ایک جو تھے وہ روکتے تھے. تو جب اللہ نے عذاب بھیجا نا کہ بندر بن جاؤ, کونو ہو جاؤ, ارادتن بندر خاسئین, جن پر لعنت ہے, تو دو گروہ جو تھے نا وہ بندر بن گئے. بچے وہ جو مچھلیاں پکڑ بھی نہیں رہے تھے اور روک رہے تھے نا, تو ان پر اللہ کا جو ہے وہ عذاب آ گیا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یعنی انہوں نے ہفتے کے دن جو ہے بندگی کے دن کو عبادت کے لیے نہ رکھا. 6 دن کام کے تھے, ایک دن عبادت کا تھا, وہ بھی وہ پورا نہ کر سکے. اور آج دیکھ لے ہمارے پاس بھی جمعے کا دن عبادت کا دن ہے, جمعہ کی نماز ہمارے لیے جو ہے وہ مردوں کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ ضروری ہے, لیکن آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو جمعے کی نمازوں کا اہتمام جو ہے وہ کرتے ہیں. ہمارے گھروں سے کتنے بیٹے اور شوہر جاتے ہیں, یا جاب سے خاص طور پر انہوں نے بات کر کے رکھی ہے, یا ہمارے بچے جو کالجز اور اسکول میں جاتے ہیں, ہم نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ جمعے کی نماز جو ہے پڑھے گا. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا جو ہے وہ اہتمام کریں. جمعے کے وقت تجارت حرام ہے. پھر فرمایا فَجْعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, کہ ہم نے بنا دیا ان کے انجام کو ایک عبرت بنا دیا. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑ دیا. تو بینا یدئیہا, بینا کہتے ہیں درمیان کو, یدئین یہ اصل میں نا یدئین تھا, یا کے ساتھ نون بھی تھی, نون گر چکا ہے تثنیے کا, دونوں ہاتھوں کے درمیان, اس سے مراد ہے آگے, یعنی جو آنے والے لوگ تھے ان کے لیے بھی, جو پیچھے تھے سب کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عبرت بنا دیا. کن کو؟ جن کو بندر بنایا گیا تھا. کہتے ہیں کہ ان کی شکلیں بندروں کی طرح تھی, لیکن یہ ہے کہ ویسے جو تھے تو آواز نکالنا یا کچھ حرکتیں جو تھی وہ انسانوں جیسی بھی تھیں. بعض لوگ کہتے ہیں 3 دن تک یہ رہے اور پھر یہ مر گئے, ختم ہو گئے 3 دن, کیونکہ جس قوم پر عذاب آئے, جس جگہ پر عذاب آئے, پھر وہ جو ہے اس کو, اس کے اندر کوئی حیات نہیں رہتی, اس کے اندر کوئی زندگی کے آثار جو ہے وہ نہیں ہوتے. تو عبرت بنا کے رکھ دیا. اور بعض اس سے وہی لیں گے جو ڈرنے والے ہیں, ہے نا, کہ ہم بھی اللہ سے ڈریں اور اپنے اعمال کو ٹھیک کریں. اب کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے, کیونکہ ان کی عادت تھی کہ باتیں کرنا اور مطالبات کرنا, اور اس کے بعد مطالبات کر کے عہد شکنی کرنا, اپنے وعدوں کو توڑنا, تو اب کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو بڑا مالدار تھا, اور اس کے بھتیجے نے اس کو موقع پا کر قتل کر دیا اور اس کی لاش کو اٹھا کر کہیں پھینک دیا. تو وہ چاہتا کیا تھا کہ اس کی بیٹی سے شادی بھی کر لے اور اس کو مال بھی مل جائے. اور اب پتہ نہیں چلتا تھا کہ چچا کو قتل کس نے کیا. آدمی قتل ہو گیا, پر قتل کس نے کیا, جھگڑا ہونے لگا لوگوں میں نا, ایک فدارا تم, ہے نا, تو آپس میں ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے, اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کیا کرو, ان تذبحوا بقرہ, کہ گائے ذبح کرو. اب یہ بڑی عجیب بات تھی کہ ان کو گائے ذبح کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ گائے کی عظمت, اس کی تقدیس, اور گائے کی گو پرستی, گائے کو پوجنا ان کے اندر بڑا رچ بس گیا تھا. مصر کے اندر رہتے تھے, مصر کے اندر گائے کی پوجا کی جاتی تھی, ہے نا, یوسف علیہ السلام کے زمانے بنی اسرائیل مصر میں جا کے آباد ہو گئے تھے. तो वहीं से जो हुक्मरान कौम थी उनकी जो अमराज थे इनके अंदर भी आ गए, अब गाय को पूजा करते थे, हालांकि मिस्र से निकल चुके हैं, सहरा में आए हैं, है ना, अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा है। लेकिन हमने पहले भी पढ़ा ना कि उन्होंने इजल जो है बछड़े को की पूजा करनी शुरू कर दी, तो अब ये कि वो गाय की पूजा करते थे, अब उनको हुक्म दिया गया कि तुम गाय को जिबा करो। और ये चीज बड़ी अनोखी थी, पालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुआ, कहने लगे क्या तुम हमारे साथ, तुम हमसे मजाक करते हो, यानी ये कैसी बात है, वो हमारा खुदा, हम उसकी पूजा करें और तुम हमसे कहते हो कि हम इसकी इसको जो है जिबा कर दे। قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं इससे अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मैं जाहिलों की सी बातें करूं, यानी मेरी कैसी ऐसी कैसी मिजाल कि मैं जो है वो जाहिलों की सी बातें करूं, मैं तो अल्लाह की पनाह में आता हूँ। قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي, कहने लगे कि अपने रब से पूछ कर बता मा हिया कि वो कैसी है, गाय की कुछ तफसील तो बताइए। قال انه يقول انها بكره لا فارض ولا بكر, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک وہ ایک گائے ہے جو کہ نہ تو بوڑھی ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت چھوٹی ہونی چاہیے, لا فارد ہوں ولا بکر, نہ بہت بوڑھی ہو نہ بہت چھوٹی ہو, بچیا بھی نہ ہو, کیا ہو, اوان بین ذالک, بلکہ اوسط عمر کی ہو, جوان ہونی چاہیے, درمیانی عمر کی ہونی چاہیے۔ فافعلوا ما تؤمرون, کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں, آپ نوٹ کرتی جائیں کتنے سوال وہ پوچھ رہے ہیں نا, है ना, कितनी हुज्जत बाजियां कर रहे हैं। अब फिर कहते हैं قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا, अपने रब से पूछ कर हमें बताइए कि उसका रंग कैसा हो। قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ صَفْرَاءُ فَاقِعُ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वो फरमाता है जर्द रंग की गाय होनी चाहिए, फाक्यून शोख जर्द रंग, खालिस जर्द रंग, जिसका रंग इतना शोख हो कि देखने वालों का जी खुश हो जाए। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये जवाब दिया तो वो बहुत परेशान हुए, क्योंकि अब खास ये वो गाय थी जिसकी वो पूजा करते थे, यानी कौम जितने जितने सवाल करती गई उतनी उतनी पाबंदियां बढ़ती गईं। इन सारी पाबंदियों के बाद अब एक ही गाय रह गई थी जो सुनहरी रंग की थी, बेदाग थी, जवान थी, जिसे वो खास तौर पे उन्होंने पूजा पाठ के लिए मुंतखब किया हुआ था। अब ये बात उनके लिए बड़ी कोफ्त की थी, ये बात उनके लिए बड़ी मुसीबत की थी, क्योंकि अब कह दिया कि वो उसका जर्द रंग होना चाहिए। قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ, फिर कहने लगे कि अपने रब से साफ साफ पूछ कर बताओ कैसी हो, पहले भी कह चुके हैं ना, مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا, वो तो हमें बिल्कुल ही शक पड़ गया अब इसमें, शक यानी ऐसा कैसे हो सकता है कि हम गाय ज़बह करें जिसकी हम पूजा करते हैं, हमें मशकूक हो गई है वो। وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, अल्लाह ने चाहा तो हमें जरूर सही पता चल जाएगा, यानी हम हदायत पा लेंगे कि कैसी गाय सिबा करनी है। قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَكَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ, मूसा अलैहि सलाम ने जवाब दिया अल्लाह कहता है कि वो ऐसी गाय है जिससे खिदमत नहीं ली जाती, है ना, वो काम नहीं करती, क्योंकि वो जिस गाय की पूजा करते थे उससे कोई काम नहीं लेते थे, ना वो जमीन जोतती है ना वो पानी खींचती है, कैसी गाय है, मुसल्लमतुल्ला शिया फीहा, सही सालिम है, कोई दाग भी नहीं है उस पर लगा हुआ, बड़ी खूबसूरत अच्छी सी है। अब क्या हुआ, قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ, कहने लगे हाँ अब तुमने ठीक बताया, قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ, अब तू आया है हक लेकर, فَذَبَحُوهَا, फिर उसको जिबा कर दिया, وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, वो उसको जिबा करने वाले न थे, यानी जिबा करना नहीं चाहते थे, सवाल करते गए, और कहते हैं कि अगर वो सवाल ना पूछते ना, जिस भी गाय को जिबा कर देते अल्लाह उसको कबूल कर लेता। तो जूं जूं सवाल करते गए उतने ही उनके ऊपर पाबंदियां जो थी वो बढ़ती गई। इससे हमारी जिंदगी के लिए भी एक उसूल निकलता है, क्योंकि बनी इसराइल की आदत थी सवाल करना, तो हमें भी ना सवाल नहीं ज्यादा करने चाहिए। एक दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों तुम पे हज फर्ज कर दिया गया, एक बैठे हुए थे साहबी कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हर साल, आप फिर खामोश थे, फिर उसने कहा کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال؟ پھر کہا، پھر آپ خاموش رہے، پھر تیسری دفعہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سال؟ تو آپ نے کہا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، ہے نا؟ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بعض اوقات بہت سے بار بار کوشچن کرتے ہیں، بعض اوقات یہ ہے کہ گھر میں کچھ بھی پکا لیں، خود ہی سوال جان کے پوچھ بیٹھتے آج کیا پکائیں، وہ چیز بتا جاتا ہے شوہر جاتے جاتے کہ آج جو ہے نا یہ پکانا، پھر کہتے ہیں اچھی مصیبت میں پڑ گئے ہیں بھائی، نہ پوچھا ہوتا کچھ بھی پکاتے چل جانا تھا، ہے نا؟ عید پر بچوں کو کچھ بھی پہنا دے، پوچھ بیٹھتے ہیں کیا بنائے، وہ کہتے ہیں لہنگا بنائے، تو فلاں بنائے، کہتے ہیں لو جی اب میں کہاں سے تیرے لیے لہنگا لاؤں، بھی پوچھا کس نے کہا تھا پوچھو جو تھا وہ پہنا دو، خود ہی پوچھتے ہیں اور پھر روتے بھی ہیں، بعض اوقات بہت سے سوال کرتے ہیں پھر مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، تو بہتر ہے کم باتیں کیا کریں، کم سوال کیا کریں، اور جو دین کے مزاج کو سمجھ کرنا عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بعض لوگوں کی تو عادت ہے ہر جگہ کچھ مخصوص سوال ہے وہ ہر اسکالر سے پوچھتے ہیں، ہر مسجد میں پوچھتے ہیں، ہر ٹریننگ کیمپ میں پوچھتے ہیں، اور پھر عمل پھر بھی وہیں کا ہمارا وہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا پھر اس کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یعنی اس کے بارے میں ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے۔ اب کیا تھا نا کہ اب کوئی مانتا ہی نہیں تھا کہ اس آدمی کو قتل کس نے کیا ہے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو کھول کر رکھ دے گا۔ تو اللہ نے کیسے فیصلہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا گائے ذبح کرو، ہے نا، گائے ذبح کرو، اور گائے وہ جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فقل نضربوہ ببعضہا، اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، یعنی گائے کے گوشت، پہلے گائے کو ذبح کرو، گائے کے گوشت کا ٹکڑا لے کر جو مرا ہوا شخص ہے نا اس کی لاش کو لگاؤ، کیا ہوگا کہ وہ زندہ ہو جائے گا۔ کذالک یحیی اللہ الموتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندگی بخشتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جب وہ گائے کو ذبح کرنا اور پھر مقتول کا زندہ ہونا، یہاں پہ دو قدرت کے کرش میں تھے۔ پہلی بات یہ کہ گائے اگر تمہارا معبود تھا، جب اس کو ذبح کیا گیا تو کوئی طوفان نہیں آیا، کوئی آندھی نہیں آئی، کوئی آسمان نہیں گرا، کچھ بھی نہیں ہوا، گائے کو ذبح کیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو تمہارا معبود اگر ہوتا، اس کے اندر کوئی قوت ہوتی تو کچھ ہونا چاہیے تھا نا، کچھ بھی نہ ہوا۔ دوسری بات کیا پتا چلی؟ الٹا فائدہ ہوا گائے کو ذبح کرنے کا، کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا مقتول کون ہے، تو گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا، جی بادی ہاں، یہ ہاں کی ضمیر گائے کے لیے ہے، گائے کے گوشت کے ٹکڑے کو لوئے کے ادربو ہو کی ضمیر اس میت کے لیے ہے، جب اس کو ماری گئی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہو گیا اور اس نے پھر بتایا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے، تو اس طرح مقتول کا پتہ جو تھا وہ چل گیا۔ تو یہ تھی اللہ کی قدرت کی نشانی، تو یہاں پہ دو فائدے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ تو جب چاہے جس کو چاہے زندہ کر دے، جب وہ کوئی بھی وجود نہیں ہوتا تو کسی کو زندہ کر سکتا ہے، تو ایک مرے ہوئے کو زندہ کر کے اس سے ایک بات کا پوچھنا کچھ بھی ناممکن نہیں تھا۔ تو اصل بات کیا ہے؟ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے شاید کہ تم جو ہے وہ عقل سے کام لو۔ سبحانک اللہم وبحمدک نستغفرک ونتوب الیک۔